लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। पांडव भवन की इस तपस्वी भूमि में हम सभी को बाबा के अनन्य और तपस्वी मूरत बच्चों के अनुभव और ज्ञान के लाभ मिल रहे हैं। आज विशेष उर्मिला बहन जी हम सभी के अंदर विशेष ज्वालामुखी योग का अभ्यास कैसे करें उसके विषय में अपने अनुभव युक्त बोल हमारे सामने रखेंगे, पर पहले हम सभी उनका एक हाथ की ताली से दिल से स्वागत करते हैं। उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको दूं। लौकिक नाम राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन है। शिक्षा इन्होंने एमए इंग्लिश कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्राप्त की है। ज्ञान में 1981 से आए हैं, समर्पित हुए हैं 1985 में, और विशेष पद इनका ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में राजयोग शिक्षिका, संयुक्त संपादिका ज्ञानमृत मासिक पत्रिका व सह संपादिका त्रैमासिक हरियाली पत्रिका। हर महीने इनके ज्ञानमृत में बहुत अच्छे अच्छे लेख आते हैं, आप सभी पढ़ते हैं ना? और आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों तथा नेपाल में भी ईश्वरीय सेवाएं की हैं। अफ्रीका के केन्या देश में भी आपने सेवाएं दी हैं। हमने भी, हम दोनों इकट्ठे नैरोबी गए थे, 20-22 दिन हमने और उर्मिला बहन ने साथ मिलकर बहुत सारे शहरों में बाबा की सेवाएं की थी। तो मुझे भी इनके साथ सेवा करने का और इनके अनुभवों को प्राप्त करने का एक अच्छा मौका मिला था। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रिफ्रेशर कोर्स तथा विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपका सक्रिय योगदान रहता है। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं। आपके लेख परिवर्तनकारी होते हैं, अनेक पत्रिकाओं में आपके लेख छपते रहते हैं। अमृत संचय नाम से आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, ताली बजाएं सभी। तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन, स्वप्रबंधन, नेतृत्व कला, व्यक्तित्व विकास, माइंड मैनेजमेंट आदि अनेक विषयों पर आप वक्तव्य देती हैं। कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य अनेक प्रकार के संस्थानों में आपने प्रवचन दिए हैं तथा राजयोग की अनुभूति करवाई है। तो ऐसी अनुभवी बहन का हम सभी अनुभवयुक्त क्लास सुनेंगे। उर्मिला बहन, ओम शांति।
हम सब बाबा के योगी बच्चे हैं। प्यारे बाबा की मुरली में प्रतिदिन योग की महिमा की बहुत बातें सुनते हैं। दुनिया के सभी योगों में सर्वोच्च योग प्यारे बाबा ने हमें सिखाया है, तो आज हम उसी योग की गहराई में जाएंगे। भले हमने इसका नाम ज्वालामुखी योग रखा है, ज्वालामुखी योग माना ही शक्तिशाली योग, ऐसा योग जो हमारे विकर्मों को विनाश करे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, और दादी रतन मोहिनी मुरली सुना रही थी तो खास उन्होंने जोर दिया कि योग से कैसे विकर्म विनाश होते हैं, संस्कार परिवर्तन होते हैं, इस बात के ऊपर हम बच्चों को विशेष मनन, चिंतन और अनुभव करने की आवश्यकता है। जब हम कहते हैं कि योग से विकर्म विनाश होते हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आत्मा के ऊपर जो अनेक जन्मों की लिखत है, पुरानी लिखत है, वो मिट जाती है। और चूंकि वो मिट जाती है तो हम इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि भविष्य में और उस प्रकार की लिखत ना हो, उसके लिए हम बहुत सावधान भी हो जाते हैं और हमारे में वो शक्ति भी आ जाती है। अब इसमें दो पहलू हैं हमारे सामने। एक पहलू तो ये है कि हमको ये मालूम पड़े कि मेरे अंदर कौन कौन से विकर्म, कौन कौन से विकार अभी रहे हुए हैं, और दूसरा हमको ये मालूम पड़े कि उनको डिलीट करने का, उनको खत्म करने का तरीका क्या है। अब जो पहला स्टेप है वो ये है कि मेरे भीतर अभी क्या क्या है, क्या क्या है हमारे अंदर। हम बाहर तो सब कुछ देख लेते हैं लेकिन भीतर क्या क्या है उसको हम कैसे देखें। आंखें तो बाहर का संसार देखती हैं लेकिन अंदर का देखने का एक बहुत सुंदर तरीका है। जैसे मान लीजिए हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं और एक पेट्रोल का या डीजल का कोई स्टॉक है, उसको ताला बंद है, लेकिन जब हम उसके बाजू से गुजरेंगे तो क्या होगा, स्मेल आएगी। तो हमने बिना देखे बता दिया कि इसमें या तो डीजल या पेट्रोल या किरोसिन भरा हुआ है। इसी तरह से मान लो कोई एक गोदाम है, उसमें चंदन भरा हुआ है, तो उसके बाजू से गुजरेंगे तो भी हम बता देंगे ना, कैसे पता पड़ा, क्योंकि जो चीज अंदर भरी है उसकी स्मेल बाहर फैलती है। तो हमारे अंदर जो कुछ भरा हुआ उसकी भी तो स्मेल आती होगी ना। वो स्मेल कैसे आती है, संकल्पों के माध्यम से वो स्मेल आती है। सारा दिन में हमारे जो संकल्प उठते हैं वो किस प्रकार के हैं, उससे हमें मालूम पड़ता है कि मेरे संस्कारों का स्टॉक किस प्रकार का है। बाह्य जगत में हम जो भी कुछ देखते हैं देखने के बाद हमारी जो रिएक्शन होती है वो भी हमारे भीतर के संस्कार के अनुसार होती है, स्टॉक के अनुसार होती है। और जो संकल्प पैदा होते हैं वो किसी ना किसी सामने की चीज को देखकर के ही पैदा होते हैं, उस प्रकार के। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक गाय खड़ी है और तीन लोग उस गाय को देखते हैं, तो पहले व्यक्ति ने जैसे गाय को देखा उसके अंदर से एक थॉट आया कि गाय बड़ी पूजनीय होती है, गाय तो हम भारतवासियों की माता है, इसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास है, इसलिए इसको नमस्कार करना चाहिए। वो हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। दूसरे व्यक्ति ने भी उसी गाय को देखा, उसके अंदर से थॉट पैदा हुआ कि इस गाय को अगर मैं खरीद लूं, क्योंकि ये काफी दूध वाली गाय लगती है, तो मेरी दूध की जरूरत पूरी हो जाएगी। और तीसरे व्यक्ति ने भी उस गाय को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि काफी हेल्दी है गाय, अगर मैं इसको भगा लूं और किसी बुच्चर को अभी अभी दे दूं तो मुझे हाथों हाथ 500 रुपया तो सहज ही मिल जाएगा। अब गाय तो एक ही है ना, और तीनों ने उसके गाय के रूप में ही देखा, किसी ने उसको भैंस देखा या बकरी देखा ऐसा तो नहीं है। तो गाय भी एक जैसी है, आंखें भी एक जैसी हैं। अंतर कहाँ है? विचार। ये विचार कहाँ से आए? गाय ने तो नहीं दिए ये गाय का, ये विचार कहाँ से आए? अंदर जो स्टॉक भरा हुआ है उसके आधार पे विचार पैदा हुए। पहले व्यक्ति के जो विचार हैं वो बहुत ही सतोगुणी है, उसकी बैकग्राउंड ऐसी रही, उसका संग ऐसा रहा, पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही कि उसने सारा जीवन गाय को आदर दिया। दूसरा व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति है, उसको अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने की लगन है, इसलिए वो दूध की उपयोगिता के आधार पे गाय को देखता है, रजोगुणी संस्कार। और तीसरे व्यक्ति के बहुत ही निकृष्ट संस्कार, उसको देखते ही मारना, काटना, छीनना, झपटना, इस तरह के विचार पैदा होते हैं। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि ये गाय खराब है, इसको देख के हमारे विचार खराब चलते हैं, इस गाय को यहाँ से हटा दो तो वहां भैंस आएगी तो भी वैसे विचार चलेंगे, बकरी आ जाएगी तो भी वैसे विचार चलेंगे। तो सामने की चीज को हटाने से कोई फायदा नहीं है, फायदा कब है? जब हम अंदर में हमारा जो स्टॉक है उसको परिवर्तन करें। इसको बाबा कहता है संस्कार परिवर्तन। और ये परिवर्तन ज्वालामुखी योग के माध्यम से होता है, लेकिन योग भी ज्ञान पे आधारित होता है, वो भी बाबा ने बताया, उसको भी हम आगे स्पष्ट करेंगे। तो एक बात हमको समझ में आ गई कि मेरे अंदर अभी क्या क्या भरा है, उसका मुझे मेरे संकल्पों से मालूम पड़ता है, किस तरह के थॉट्स मेरे पैदा हुए। सारा दिन थॉट्स तो चलते ही रहते, तो मैं 16 कला तक पहुंचा, या मैं 14 कला तक पहुंचा, या मैं अभी 8 कला तक द्वापर वाली स्टेज तक पहुंचा, मैं कहां तक पहुंचा, मुझे मेरे थॉट्स से मालूम पड़ेगा। थॉट्स वाणी में आती है और वाणी फिर कर्म में आती है, इसलिए हमारे जो संस्कार है उनकी प्रबलता भी हमें तीन स्तर पे दिखाई देती है। पहला स्तर है कि केवल थॉट पैदा हुआ, विचार पैदा हुआ, लेकिन मेरी इतनी अच्छी निर्णय शक्ति है, बुद्धि मेरी इतनी अच्छी है, उसने तुरंत जान लिया कि ये विचार गलत पैदा हुआ है और मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। ये तुम क्या सोच रहे हो, तुम एक ब्राह्मण हो, तुम भगवान की इतनी ऊंची संतान हो, ये तुम्हारे अंदर क्या विचार पैदा हुआ? और पानी की लकीर की तरह विचार आया और हमने उसको वहीं रोक दिया। इसका मतलब मैं बहुत ताकतवर आत्मा हूं, मेरे में बहुत शक्ति है, अंदर कोई भी बीज जैसे ही अंकुरित होता है मैं उसे मसल देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। होता तो है लेकिन वो मेरे पे हावी नहीं होता है, मैं बहुत ताकतवर आत्मा हूँ। दूसरी स्टेज ये है कि थॉट तो उठा लेकिन वो वाणी तक भी आ गया, मैंने बोल दिया, और जब मैंने बोला तो उसके बाद मुझे पश्चाताप हुआ, अरे ये क्या हुआ, या मुझे सामने वाले ने टोका, ये तुम क्या बोलते हो, तुम एक ब्राह्मण होकर के ऐसी भाषा बोलते हो, ये कोई ब्राह्मणों की भाषा है, तो मुझे समझ में आया ये मैंने क्या किया। तो मैं बहुत ही कम ताकत वाली आत्मा हूं, क्योंकि मुझे जब दूसरा टोकता है तब मालूम पड़ता है कि मैंने कुछ गलत किया। मेरी अपनी बुद्धि तो है ही नहीं जो मुझे बता सके कि मैं गलत बोल रहा हूं। और फिर तीसरी स्टेज ये है कि वाणी को पार करके मैं कर्म तक भी आ गई, मैंने उस थॉट को कर्म में भी ला दिया, और जब मैं कर्म में लाई तो वो बहुत बड़ा समाचार बन गया, कईयों तक पहुंच गया। अब जब कईयों तक पहुंचा तो आपस में चर्चा करने लगे, भाई इस आदमी से थोड़ा बच के रहना, आपको पता है आज इसने क्या किया। तो जब मैंने मेरे बारे में चर्चा सुनी कि ये लोग तो कह रही हैं कि ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, इससे थोड़ा बच के रहना, तो मुझे शर्म आई। अब मेरे को जागृति आई कि मेरे को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी प्रबलता की तीसरी स्टेज है। संस्कार इतना प्रबल है कि कोई दूसरे लोग चर्चा करके चिंतन करके फिर मुझे सावधान करते हैं तो मुझे मालूम पड़ता है, अदरवाइज तो मैं लापरवाह हूं। तो एक तो मुझे ये देखना है कि मेरे थॉट्स को किस प्रकार के हैं, दूसरा मुझे ये देखना है उसकी प्रबलता कितनी है, और फिर तीसरा मुझे ये देखना है कि मैं उसको हटाऊं कैसे, मिटाऊं कैसे। अब तीसरा मेरे में रियलाइजेशन है, मैंने देख लिया कि है क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, और ये भी देख लिया कि काफी प्रबल है, लकीर की तरह नहीं है। अब मेरी इच्छा है कि ये मिट जाए। तो इसमें मुझे ज्ञान और योग दोनों चीजें मदद करेंगी। ज्ञान की मदद अपने ढंग से है, योग की मदद अपने ढंग से है। अब जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग रूम है, और वहां हमने फल रखे हैं बहुत सारे, एक टोकरे में डाल करके बहुत सारे फल रखे हुए हैं, दसियों प्रकार के फल हैं, पपीता है, चीकू है, आम है, अमरूद है, बहुत सारी चीजें। तो जैसे ही हम डाइनिंग में जाते हैं तो उनकी खुशबू आती है, मिक्स खुशबू आती है, बड़ा अच्छा लगता है। अब एक दिन क्या हुआ कि एक फल सड़ गया, और जैसे ही हम डाइनिंग में आए तो क्या हुआ, उस सड़े हुए फल की जो बदबू थी वो हमको आई, महसूस हुई। अब देखिए फल तो 10 प्रकार के थे लेकिन उसमें एक फल सड़ा, 9 तो ठीक है ना, लेकिन आपको 9 की खुशबू आई क्या, क्या हुआ, एक जो सड़ा उसने पूरे डाइनिंग रूम को खराब कर दिया। तो एक जो बुराई है उसकी प्रबलता कितनी है, उसने हमारी 9 अच्छाइयों को ढक दिया। मैं बहुत मिलनसार हूं, कोऑपरेटिव हूं, सच्ची भी हूं, नियम मर्यादाओं का पालन भी करती हूं, सारी बातें करती हूं, लेकिन थोड़ा क्रोध है। तो मेरी जो इमेज बनेगी सबके बीच में वो इमेज किस तरह की बनेगी, एक गुण ने सारे गुणों को ढक दिया। अब हम क्या करेंगे, फलों के टोकरे के नजदीक जाएंगे और हमको मालूम पड़ जाता है कि ये अमरूद की बदबू है, तो उसमें हाथ डाल करके अमरूद को ढूंढेंगे और निकाल करके फेंक देंगे, बस काम पूरा हो गया ना। अब बाकी जो 9 फल बचे उनकी खुशबू फिर आनी शुरू हो गई। देखो कितना सरल काम है, निकाला और फेंका। लेकिन क्या संस्कार इस तरह से निकाल करके फेंका जा सकता है? डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ गांठ है, तो उसमें भी चलिए 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, चलिए हफ्ता भर उसने दवाई खिलाई, फिर भी वो काट करके रसोली होगी, गांठ होगी, ऐसे फेंक देगा। फिर भी थोड़ा इजी काम है, लेकिन संस्कार को निकाल के फेंकना वो तो किसी डॉक्टर के वश में भी नहीं है। इसलिए मेरी चेकिंग और मेरा परिवर्तन केवल मैं कर सकती हूँ और कोई इसमें मदद कर ही नहीं सकता। अब अपने भीतर जो फल सड़ रहा है उसको हम कैसे निकालें? उसमें भी कैटेगरी होगी। एक ज्यादा प्रबल होगा, जैसे अमरूद ज्यादा सड़ रहा है, संतरा लगा कि बस अभी शुरुआत हुई है सड़ने की, केला भी लग रहा है, सेब भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा है, तो एक संस्कार है जो बहुत ज्यादा परेशान करता है, दूसरा थोड़ा कम है, तीसरा भी है पर वो थोड़ा और कम है। लेकिन हम सबसे पहले प्रयास करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रबल है उसके लिए। तो सबसे ज्यादा प्रबल मान लीजिए मेरे में क्रोध है। अब इसके 2 तरीके हैं, एक है ज्ञान का तरीका, एक है योग का तरीका, जिसको बाबा ने ज्वालामुखी योग का। अगर हम ज्वालामुखी योग करेंगे तो भूल ही जाएंगे क्रोध करना, या क्रोध क्या चीज है कोई हमें याद दिलाएगा तो पता पड़ेगा कि हाँ हम कभी किया करते थे, नहीं तो ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे था ही नहीं। अब जो ज्ञान का तरीका है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और थोड़ा अधिक, थोड़ा कम कारगर है, और जो योग वाला है वो मिनट मोटर का काम है। जैसे कहते हैं ज्ञान जल है, तो जल में आप कोई भी चीज डालेंगे तो चीज तो साफ हो जाएगी लेकिन जल गंदा हो जाएगा। और जैसे बाबा कहते हैं योग अग्नि है, तो बाबा ने कहा अग्नि में कोई भी चीज डालेंगे तो समूल परिवर्तन हो जाएगी। अब ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? चलिए हम एक बार ज्ञान की बात कर लेते हैं, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान से तीसरा नेत्र खुलता है, ज्ञान होगा तो ही योग लगेगा। ज्ञान से हमको मनन करने का और अपने विचारों को सतोगुणी बनाने का आधार मिलता है। तो ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ज्ञान तो मुरली से ही मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बाबा की मुरली है वो एक तरह से एक डिस्पेंसरी का काम करती है, उसमें सारे रोगों की दवाइयां हैं। जैसे वैद्य की पुराने जमाने में दुकान होती थी ना, तो उसमें एक जैसी शीशियां रखी रहती थी, वैद्य को तो पता रहता था ये वो है वो, लेकिन वो एक जैसी लगती थी। तो बाबा की मुरली में भी कोई सीरियल नहीं होता है कि भाई ये वाली लाइन में सारी खांसी की दवाई है, ए में सिर दर्द है, मिक्स रहता है, वो डिस्पेंसरी ऐसी है। और उसमें भी जो ऐसी बातें हैं जो कॉमन है उनका जिक्र बार बार आता है, ऐसी बातें हैं जो हफ्ते में एक आध बार पैदा होती है उनका जिक्र भी हफ्ते में ही आता है, ऐसी बातें हैं जो महीने में ही एक आध बार पैदा होती है उनका जिक्र भी मुरली में महीने में ही एक आध बार आता है। तो अब जैसे मान लीजिए क्रोध है हमारे में और बाबा की मुरली में हफ्ते 10 दिन में इसके ऊपर सावधानी आई जाती है, तो हमको क्या करना है? जितनी भी क्रोध के बारे में बाबा ने दवाई दी उसको इकट्ठा कर लेना है। मान लो किसी को घुटने का दर्द हो तो वो क्या करता है? घुटने की चर्चा जहां भी होगी वही से इकट्ठी कर लेगा, अखबार में आई वो कटिंग काट के रखेगा, कोई मित्र मिला उससे पूछ के रखेगा तूने क्या दवाई खाई, तो ढेर मिलेगा उसके पास। इसी तरह से जब जब क्रोध के बारे में मुरली में आया, बाबा ने कहा बच्चे क्रोध बड़ा भूत है, तुमको क्रोध नहीं करना है, जिस घर में क्रोध है वहां पानी के मटके सूख जाते हैं, क्रोधी का तो खून भी सूख जाता है। फिर बाबा ने कहा है कि अगर किसी में क्रोध आ जाए तो आप उसके सामने मत खड़े होना, नहीं तो उसमें भूत आया वो तुम में भी प्रवेश हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं बच्चे अगर कोई क्रोध करे तो उसे फूल दो, ऐसे भी बाबा मुरली में कहते हैं। फूल देने का मतलब ये है कि वो भले क्रोध करे लेकिन हम उससे नाराज ना हो, दुखी ना हो। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि आप राम के बच्चे हो तो राम के बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्रोध तो रावण की प्रॉपर्टी है, तो आप कोई रावण के बच्चे थोड़े हो जो रावण की प्रॉपर्टी को यूज करोगे। तो ऐसे करके भिन्न भिन्न तरीके से बाबा हमें बताते हैं। हमने उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, मैगजीन में आई क्रोध की बात उसको भी हमने इकट्ठा कर लिया, किसी ने भाषण किया उसमें से भी हमने क्रोध की बातें इकट्ठी कर ली हैं, तो हमारे पास काफी सारी दवाई इकट्ठी हो गई। अब हमको ये देखना है कि मुझे क्रोध कब कब आता है, हमेशा नहीं आता है, उसका भी टाइम होता है। जैसे खांसी हो तो खांसी हमेशा थोड़े आती है, चलती थोड़े रहती है, रुक रुक के बीच बीच में आती है ना, तो ऐसे क्रोध भी बीच बीच में रुक रुक के आता है। अब हमको ये देखना है कि कब कब आता है, हर एक का टाइम अलग अलग है। अब जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जब स्कूल से आते हैं 5 बजे, मान लो 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं स्कूल से आए, आते ही कुछ डिस्टरबेंस पैदा की तो बीपी हाई हो गया, गुस्सा हो गया है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम मौसम बदल जाए, थोड़ी प्राकृतिक ऐसी दुर्घटना घट जाए तब संतुलन खो देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं बीमारी के समय उनका मन ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में ज्यादा मेहमान आ जाए तो थोड़ा चिड़चिड़ा जाते हैं। तो हर एक को देखना है कि मुझे कब कब ये बीमारी आती है, तो डॉक्टर देखना आपको जब दवाई देता है ना तो उसमें लिख के देता है कि भाई किसकी खुराक कितनी बार और कब कब खानी है, वो देखता है किसका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है तो कहेगा दिन में 5 बार, और अगर देखता है नहीं कभी कभार ही होता है तो कहेगा बस 2 बार खाने से काम चल जाएगा, है ना। तो और वो खास ये कहेगा कि आपका बीपी कब हाई होता है उससे आप 15 मिनट पहले एक खा लेना। तो हमको ये देखना है कि मुझे गुस्सा कब कब आता है, उसके आने से 15 मिनट पहले वो सारी पॉइंट एक बार पढ़ लेनी है। तो क्या होगा, शमन हो जाएगा, हमको याद रहेगा कि अभी ये घटना घटने वाली है, और जब जब ये घटना घटती है तो मुझे गुस्सा आता है, इससे पहले मैं ये सब पढ़ करके अपने मन को शीतल कर लूं तो ये नहीं आएगा। तो ये तरीका है, ज्ञान का तरीका संस्कार का शमन करने का, और ये तरीका हम हर एक संस्कार के लिए अपना सकते हैं, चाहे वो क्रोध हो, तृष्णा हो, लोभ हो, इच्छा हो, जो भी हो, हर एक के लिए आता है ना, मुरली में हर एक के लिए सावधानी आती है, हैं? अब दूसरी बात है योग की, जिसको बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग, शक्तिशाली योग। आप किसी आग में एक छोटी सी लकड़ी डालोगे जल करके बुझ जाएगी, लेकिन लकड़ी पे लकड़ी डालते रहोगे तो ज्वाला बन जाएगी और बड़ी बड़ी चीज को भी भस्म कर देगी। तो वास्तव में तो ज्वालामुखी योग का अर्थ ये है कि मन उस ऊंची स्थिति में बना ही रहे। इसके लिए हम बार 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 अपने आप को इस तरह का मनन, इस तरह की स्मृति देते रहे तो हमारी वो स्थिति ऊंची बनी ही रहेगी। मन की स्थिति नीचे आएगी ही नहीं, निरंतर हमको स्मृति रहेगी कि मैं कहाँ हूं और मैं कौन हूं। तो उस स्थिति से दो फायदे होंगे, एक तो वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनका हम पर असर नहीं होगा, और दूसरा जो पुराना है वो भी खत्म होता जाएगा। तो हम ज्वालामुखी योग की एक प्रैक्टिकल घटना के बारे में अभी आपको सुनाएंगे। काफी वर्ष पुरानी बात है, 5-7 साल हो गए होंगे। नीचे शांतिवन में साउथ का एक व्यक्ति आया था, वो सांसद था, एमपी जिसको हम कहते हैं, और नीचे की एक कॉन्फ्रेंस में उसने अपना भाषण सुनाया था। तो वो भाषण हम सबने सुना था। उस भाषण में उसने अपना योग का अनुभव सुनाया था, वो था तो बिल्कुल नया, लेकिन बाबा की कई बार ऐसी मदद होती है कि नए व्यक्ति में भी एकदम चेंज आ जाता है। तो उसके जीवन में जो चेंज आया, उस चेंज का वो अनुभव सुना रहा था। तो उस चेंज को सुनकर के हमको लगा कि ये बाबा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद है, इतना चेंज कोई हो नहीं सकता जिस तरह का उसने अनुभव सुनाया। तो उसको हम सुनेंगे, तुमको महसूसता आएगी कि किसी व्यक्ति के 2-5 मिनट के अनुभव से उसमें इतना परिवर्तन आ सकता है। तो ये योग कितनी बड़ी ताकत है। वो व्यक्ति साउथ का था, विशाखापट्टनम, या अच्छे से याद नहीं है, मैगजीन में उसका अनुभव लिखा हुआ है लेकिन सन मुझे याद नहीं है। तो उसका एक कोई मित्र था, वो ब्रह्मा कुमारी के थोड़े टच में था, और उसको कभी कभार बाबा की बातें, त्याग तपस्या की बातें सुनाता था। वो व्यक्ति सब कुछ खाने पीने वाला था, व्यसनी भी था, सुनता था ज्ञान की बातें, लेकिन कोई जीवन में धारणा नहीं थी। तो एक बार उसको विदेश जाना था, अपने दोस्त को साथ लेकर के वो विदेश गया। जब एयरपोर्ट पे उसके मित्र दोस्त, ऐसे लोगों के तो लंबी लाइन होती है जान पहचान वालों की, तो वो एयरपोर्ट पे उसे विदाई देने आए। तो जब विदाई देने आए तो अपने साथ कोई चूरट, कोई सुपारी, कोई गुटखा, इस तरह की चीजें जिनका वो अभ्यासी था, वो पैकेट ले लेके आए, साहब विदेश में ये चीजें नहीं मिलेंगी तो आप ये ले जाइए, ताकि आप 10-15 दिन वहां रहेंगे तो आपको 10-15 दिन आराम से गुजरेंगे। ऐसे कर करके उन्होंने काफी अच्छा सा थैला बना के उसको दे दिया। वो ले गया, रास्ते भर खाता रहा, वहां भी खाता रहा। कुछ देशों की यात्रा करने के बाद वो लोग न्यूयॉर्क में आए, और न्यूयॉर्क में हमारा एक रिट्रीट सेंटर है। तो वो जो उसका दोस्त था जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानता था, उसने उसको कहा कि देखो यहाँ पे भारत की कुछ बहनों का एक आश्रम है, और वो बहनें यहाँ के लोगों को ज्ञान योग सिखाती हैं, तो कहो तो मैं आपको दिखाऊं वो आश्रम। तो उसने सोचा भाई भारत के सन्यासी तो आते हैं ज्ञान देने, भारत की बहनें भी आती हैं क्या, थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसने कहा चलो देखने में क्या हर्जा, एक राउंड लगा के आ जाएंगे। तो जब वो लोग अंदर गए उस रिट्रीट सेंटर के, तो भोजन चालू था, तो ये व्यक्ति तो नॉन वेज खाने वाला था, और कईयों को ऐसी भासना होती है कि बड़े लोग तो ऐसी ही चीजें खाते हैं, साधारण दाल रोटी खाना ये तो छोटे लोगों का काम है। तो उसको लगा कि ये विदेशी लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग, कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, मना 25 लोग होंगे तो 25 गाड़ियां थी। तो उसको लगा ये तो सब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तो देखूं तो सही क्या खा रही है। तो जब ऐसे राउंड लगाया तो उसने देखा सबकी थाली में दाल चावल चपाती वगैरह वगैरह हिंदुस्तानी खाना था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, सब हिंदुस्तानी खाना है, हैं तो विदेश के, विदेशी लोग, गोरे लोग, पर हिंदुस्तानी खाना खा रहे हैं। तो ऐसे जब राउंड लगा रहे थे तो बहनों को मालूम पड़ा कि ये इंडिया का बड़ा आदमी है, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि आज शाम को रिट्रीट शुरू होने वाली है, ये लोग जो वीकेंड पे आए हैं तो आज सैटरडे है कल संडे है, आपके पास भी अगर टाइम हो तो आप भी इनके साथ शामिल हो जाइए। तो उसके मन में आया कि ये हिंदुस्तानी खाना खा रही हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ऐसी क्या कैसे है ये, मैं भी चलो। तो उसने आगे का प्रोग्राम पोस्टपोन किया और दोनों को वहां एक रूम दे दिया बहनों ने, और वो भी जब शाम को क्लास शुरू हुई तो क्लास में बैठ गए। अब थोड़े से लोग थे, 15-20 होंगे, छोटा सा रूम था, और जो बहन क्लास करवाने वाली थी वो बड़े साइंटिफिक ढंग से क्लास करवा रही थी, बड़ा अच्छा अनुभव करवा रही थी, बड़ी अच्छी अनुभूति करवा रही थी। उसने आत्मा का जैसे ज्ञान देना शुरू किया कि भी शरीर के अंदर एक डिवाइन एनर्जी है और वो इस शरीर का संचालन करती है, वो इसमें प्रवेश करती है और इससे निकल जाती है, और जितना जितना हम उस एनर्जी की अनुभूति में रहते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। शांति तो देह के अभिमान में आने से होती है, जैसा हमारा पहला पाठ है। तो वो बहन बोलती गई, माहौल ऐसा था, शांति इतनी ज्यादा थी, और ये व्यक्ति उन शब्दों में टिकता गया। तो इसको बड़ी शांति महसूस हुई, उसको लगा जीवन में पहली बार मुझे ऐसी शांति मिली है, ये तो बहुत गहरी शांति है। क्लास पूरा हुआ और वो उस अनुभव में ही डूबा रहा। फिर जैसे कहा गया कि भाई अगला क्लास परमात्म अनुभूति का है। अब ये एक ऐसी नई चीज थी, ऐसी गहरी चीज थी और ऐसी अनुभव युक्त चीज थी कि उसको और कुछ याद ही नहीं आया, वो उसी में खोया रहा। और जब अगला क्लास हुआ परमात्म अनुभूति का, तो जैसे बहनों ने बताया कि एक सुप्रीम लाइट है, सुप्रीम एनर्जी है और वो सर्वशक्तिवान है, सर्व आत्माओं का पिता है, ऊंचे से ऊंचा है और हम आत्माएं उसके बच्चे हैं, जैसे हम योग में अनुभव करवाते हैं। तो उसको वो भी अनुभव हो गया और वो बिल्कुल डिटैच होके जैसे थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से दूर चला गया। बहुत अच्छा लगा उसे, उसे लगा जीवन में मैंने ये क्या अनुभव किया, क्या पाया, ऐसी तो ना कभी देखी बातें ना सुनी, ये तो कुछ अनोखी ही अनुभूति हो गई। इतना अच्छा लगा उसको, इतना अच्छा लगा, उसने अपने मित्र को कहा कि हम आगे के सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते हैं और बस अब वापस इंडिया चलते हैं। तो टिकट आ गई और वो इंडिया आ गए। जब इंडिया एयरपोर्ट पे आए तो वही लोग जो उसे छोड़ने आए थे उनको मालूम पड़ा कि वो आ रहा है, तो उसको रिसीव करने के लिए फिर सारे इकट्ठे हो गए। और जिस तरह से वो उसकी विदाई के समय उसके लिए सौगात लेके आए थे, वही सौगातें फिर ले आए। साहब को खुश करना था, तो जैसे ही वो पैकेट पकड़ाने लगे तो इस व्यक्ति ने कहा ये तुम क्या ले आए? तो कहा साहब ये तो आपकी मनपसंद चीज है ना? तो कहा नहीं नहीं ये क्या है, ये तुम क्या उठा लाए? तो कहा साहब जब आप गए थे ना तब भी तो हमने आपको ये दिया था। बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं दिया था, मुझे नहीं, मेरे काम की चीज नहीं है, ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए। अब एक ने पकड़ाया ऐसे बोला, दूसरे ने आगे किया ऐसे बोला, तो वो सारे सटपक आ गए, ये क्या हो गया, हफ्ता भी हुआ नहीं है पूरा, तो आदमी तो वही लगता है। अब पता नहीं आत्मा दूसरी ना आ गई। फिर ये घर में आया, घर में आया तो ये जो खाके गया था, जो इसकी मनपसंद चीज थी, वो इसकी बीबी ने बना रखी थी, कोई एग की चीज होती थी होगी कोई, जब वो लेके आई नाश्ते में, तो इस आदमी ने जैसे एयरपोर्ट पे बोला था वैसे ही उसको भी बोल दिया कि ये तुम क्या बदबू वाली चीज उठा के ले आई, ये कोई खाने की चीज है, इसमें तो बड़ी बदबू आ रही है। तो उस बहन ने कहा कि भाई जब आप गए थे तब ये आप खा के गए थे और आपको ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उस भावना से बनाई। उसने कहा नहीं नहीं मैंने ये कभी नहीं खाई, मैं ऐसी स्मेल वाली चीज कभी नहीं खाता हूं, मेरे को कोई अच्छी चीज बना करके ला के दो। तो उस बहन ने कोई दूसरी चीज बनाई, वेज चीज बनाई, और वो उसने खाई। अब इन लोगों में आपस में चर्चा हो गई, उसके जो स्नेही साथी थे और इसकी बीबी, कि भाई आखिर हुआ क्या है, इस आदमी ने हमारे पैकेट भी नहीं लिए, इसने हमारा नाश्ता भी नहीं खाया, आखिर क्या हुआ, चलो इससे पूछते हैं आखिर भी क्या हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा शांति से इसके पास ये लोग बैठे और इसको पूछने लगे कि विदेश में आपने क्या देखा, क्या हुआ। तो इसने कहा जी मैंने बाकी कुछ देखा उसको छोड़ो, मैंने ब्रह्मा कुमारियों का आश्रम देखा और वहां मैंने ऐसी शांति पाई, जीवन में ऐसी शांति मुझे कभी नहीं मिली और मैं उस शांति में अभी भी खोया हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी वो शांति बनी ही रहे, मैं अभी भी उसी अंदर से वही हूँ, शरीर मेरा यहाँ आ गया, अंदर से मैं वही उसी में हूँ अभी। तो इसके मन में आया कि हो सकता है इतना बड़ा शहर है यहाँ भी कोई शाखा होगी, उनकी बता भी दिया था इसको उस दोस्त ने कि आपके शहर में भी है। तो इसने बहनों को फोन किया तो बहनें इससे मिलने आई और बहनों ने इसको निमंत्रण दिया कि आप तो विदेश में देख के आए, इंडिया में भी तो बहुत बड़ा स्थान है, तो अभी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आप चलिए और वहां आपको जो अनुभव हुआ वो उस कॉन्फ्रेंस में आप सुनाइए। तो वो उस भाई को मधुबन में ले, मैंने नीचे शांतिवन में कोई कॉन्फ्रेंस थी उसमें लेके आई थी और उसमें उसने अपना ये अनुभव सुनाया था। तो देखिए हम महसूस कर सकते हैं, हम बाबा के बच्चे जो इस योग के अनुभवी हैं, कि किसी का व्यसन छुड़ाने में हमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी तरह के भाषण करते हैं, चित्र समझाते हैं, ओरली समझाते हैं और फिर भी वो व्यक्ति अपने साथ भी बहुत मेहनत करता है तो भी नहीं बदलता। लेकिन ये देखिए बाबा की कमाल कि उसको मालूम ही नहीं पड़ा वो कब बदल गया, ऐसा बदल गया कि उसकी स्मृति ही खत्म हो गई। अब हमारे जो संस्कार हैं वो दो प्रकार के हैं, एक संस्कार है जो इसी जन्म में बने हैं और एक है जो 63 जन्मों में बने हैं। जैसे मान लीजिए एक चादर है उसके ऊपर एक दाग तो 25 साल से है और एक कोयले का हाथ लगा, मिट्टी का हाथ लगा, रंग का आज ही हाथ लगा है। तो जब आप उसकी धुलाई करेंगे तो जो आज ही लगा है वो तो तुरंत उतर जाएगा, लेकिन जो 25 साल से है वो तो एकदम नहीं उतरेगा ना, उसकी तो काफी रगड़ाई चाहिएगी। तो ये जो व्यसन है ये हमारे बहुत पुराने संस्कार नहीं है, व्यसन तो हमारे इसी जन्म के हैं, व्यसन तो आए ही इस अंतिम जन्म में, पहले तो भारत में व्यसन ही नहीं थे आप सबको मालूम है। तो ये वो दाग हैं जो जस्ट लगे ही लगे, तो एक बार की अनुभूति से साफ हो गए, लेकिन जो दूसरे हैं 63 जन्मों वाले, अगर आप करते ही रहेंगे तो वो भी निकल जाएंगे। और जब हम किसी चीज की जैसे धुलाई करते हैं, जैसे हमने चद्दर का ही मिसाल लिया, चद्दर पे एक प्रिंट होता है जो उसका ओरिजिनल प्रिंट होता है जो मशीन से लगाया गया है, गुलाब के फूल बने हैं उसके ऊपर, वो गुलाब के फूल नहीं उतरेंगे लेकिन दाग उतरेगा। तो हमारे ऊपर कुछ प्रिंट्स, ओरिजिनल प्रिंट, बल्कि दाग उतरने के बाद गुलाब का फूल ज्यादा निखर आएगा, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, जिनको बाबा ने कहा सात संस्कार हैं आपके, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति हैं, ये ज्यादा निखर आएंगे, ये योग लगाने से ज्यादा निखरेंगे। और जो दाग के रूप में इनको ढककर के बैठे हुए हैं वो उतरते जाएंगे, योग लगाते जाएंगे, पहले फैड होंगे, उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और ये जो ओरिजिनल हैं ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। हर परिस्थिति में हमारी शांति बनी रहे, हर परिस्थिति में हमारा प्रेम बना रहे, हमारा सुख बना रहे, ये निखरते जाएंगे। तो ये हमने थ्योरी जानी, अब हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसके लिए हमारी जो आत्मिक स्थिति है वो बहुत मजबूत चाहिए, क्योंकि शिव बाबा का जो प्रेम है वो आत्मा के साथ है। शरीर तो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, अपने उसको खुद के पास शरीर नहीं है तो उसे दूसरों के शरीर क्यों पसंद आएंगे, है ना? इसलिए मुरली में बाबा कहती हैं कि मैं इन सब शरीरों से मुक्त करके आत्माओं को ले जाऊंगा, शरीरों को सरसों की तरह से शरीर पिस जाएंगे, ऐसे ऐसे बाबा बोलती हैं। और वैसे भी हम मिसाल लेते हैं कि जब आप बिजली के तार को एकदम रबड़ से मुक्त कर देते हैं तब करंट का आना जाना होता है, तो मैं आत्मा भी रबड़ को उतार दूं, बिल्कुल मुक्त हो जाऊं, न्यारी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं। मैं अशरीरी हूं ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं निरंतर उसका एहसास करूं, मैं भ्रकुटी में बैठी हूं और मैं मुक्त हूं, मेरी मर्जी है मैं इसमें रहूं या इसे छोड़ करके चली जाऊं, मैं मालिक हूं, शरीर ने मुझे नहीं बांधा, मैं मालिक हूं, ये मुझे बांध नहीं सकता, ये तो जड़ है, किसको बांध नहीं सकता, लेकिन मैं मालिक हूं, जब चाहूं इसमें आऊं, जब चाहूं इससे न्यारी हो जाऊं। तो ये एहसास मेरा चलते फिरते उठते बैठते निरंतर बना रहता है। तो इस एहसास का परिणाम क्या निकलेगा, हमारी योग युक्त स्थिति बनी रहेगी और हमें ये याद रहेगा कि मेरी जो पवित्र होने की प्रक्रिया है वो चालू है, निरंतर चालू है। जैसे हम इस मकान में बैठे हुए हैं, मकान है, हॉल है, जो भी है, इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक जड़ चीजें हैं और दूसरे हम चेतन है। अब मान लीजिए अचानक हमें कोई समाचार मिलता है कि भाई छत गिरने वाली है, गिरेगी नहीं, पर मान लो हमें समाचार मिलता है कि ये गिरने वाली है, तो क्या होगा, सारे निकल के भागेंगे। हमारे लिए देखो बढ़िया दरवाजे बने हुए हैं, एक दरवाजा ये है, एक वो है, एक वो है, एक इधर भी है, दरवाजे बनाए गए हैं इसलिए कि हम इनमें से निकल सकें, आ जा सकें, बिल्कुल हमारे अनुकूल बने हुए हैं दरवाजे हैं। लेकिन इसी कमरे में सोफा भी है, माइक भी है, पंखे भी हैं, ट्यूब भी हैं, कुछ चित्र भी हैं, ये निकलेंगे क्या? क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि ये जड़ है, इसी हॉल का हिस्सा है, अपने आप ना ये प्रवेश हुए, अपने आप ना ये जा सकते, इन्हें कोई दूसरा ही अलग करे तो बेशक, इनमें अपनी शक्ति नहीं है, लेकिन हम चेतन है, हमारे में अपनी शक्ति है। इसी तरह से ये शरीर भी एक मकान की तरह से, इस मकान में बहुत सारी चीजें, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, हड्डी है, मांस है, बहुत सारे अंग, वो इस शरीर के हिस्से हैं। अपने आप ना इसमें आ सकते हैं, अपने आप ना इससे अलग हो सकते, लेकिन आत्मा आ जा सकती है, क्योंकि वो चेतन है, एक ही चेतन है। यहाँ तो हम बहुत सारे चेतन है, पर इसमें केवल एक ही चेतन शक्ति है, और उसके दरवाजे बने हुए आने के और जाने के, आते पता नहीं पड़ता, जाते पता नहीं पड़ता, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल प्रक्रिया है, आना जाना नेचुरल है। अब अगर आप शरीर के किसी अंग को अलग करो तो पता पड़ेगा, हल्ला मचेगा, चिल्लाएगा। अगर डेड बॉडी का भी अलग करोगे तो कुछ औजार चाहिए, तब अलग होगा, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, स्वतंत्र है। तो ये नेचुरल प्रक्रिया है, चेतन का आना और जाना, ये नेचुरल प्रक्रिया है। इसलिए हम आत्मा मालिक हैं, हम आत्माओं ने शरीर को धारण किया है, जो धारण करेगा वो अपनी मर्जी से इसे छोड़ भी देगा। जैसे हम अपनी मर्जी से हॉल में आए, हॉल ने हमें नहीं बुलाया, और मर्जी से हम इससे निकल के चले जाएंगे, तो ऐसे ही मैं आत्मा अपनी मर्जी, अपने संस्कार प्रमाण, अपनी इच्छा प्रमाण इसमें आई, और जब मेरी वो इच्छा या मेरी वो जो संस्कार या मेरा वो जो हिसाब है वो पूरा होगा तो मैं निकलूंगी। शरीर ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने शरीर को छोड़ा, क्योंकि मैं मालिक हूं। तो जब मुझे ये स्मृति रहती है कि मैं मालिक हूं, तो मैं इससे डिटैच हूं। और जैसे हम इसको बार बार मन में महसूस करते हैं कि भाई देखो, मैं तुमको कभी भी छोड़ के जा सकती हूँ, मेरी तुमसे कोई ममता नहीं है, मैं तो अभी भी बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, और वो समय आया और मैं गई की गई। दिन में कई बार इस शरीर के साथ हम वार्तालाप कर लेते हैं कि भाई मैं रेडी हूँ, इसलिए तुमसे मेरा बस काम निकल जाए, उसके बाद मैं कभी भी जा सकती हूँ। तो मुझे महसूसता आती है कि मैं इससे बिल्कुल न्यारी हूँ और मैं रेडी हूँ, डिटैच हूँ, और मुझे जहाँ जाना है वो स्थान भी मेरा फिक्स है। तो ये जो मेरी आत्मिक स्थिति है, ये ज्वालामुखी योग को सरल करती है और निरंतर करती है। और भी कई तरीके से हम आत्मचिंतन कर सकते हैं, जैसे आप बाजार में कोई चीज खरीदते हो, एक लड्डू खरीदा बाजार से, अब लड्डू के ऊपर, पैकेट के ऊपर लिखा रहता है इसमें क्या क्या है। मोटे तौर पे उसमें घी होगा, चीनी होगी, आटा होगा, और कोई फ्लेवर होगा, कलर होगा। मोटे तौर पे चार चीजें होंगी, वो लिखा होगा, ये इतना परसेंट है, ये इतना है, ये इतना है, लाइक दैट। अब इसी तरह से शरीर भी एक प्रोडक्ट है, जैसे वो चार पांच चीजों से मिलके बना, ये भी पांच मोटे तौर पे तत्वों से, इनकी भी परसेंटेज है। भाई जल तत्व कितना है, लगभग 90%, वायु उसका तो कोई तोल जोख नहीं है, आकाश तत्व उसको भी आप कोई तोल जोख नहीं कर सकते हो, अग्नि उसको भी आप कैसे मापेंगे। तो एक पांचवा तत्व मिट्टी, या तो वजन जल में है या वजन मिट्टी में, अगर वो 90 है तो वो 10 है, अगर वो 89 है तो वो 11 है, इस तरह का रेशियो है। फिर उस पैकेट के ऊपर ये भी लिखा रहता है कि इसकी एक्सपायरी कब है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, लिखी रहती है ना। अब इसके ऊपर कोई लिखे या ना लिखे, लेकिन है तो सही, हर एक की अपनी अपनी है ना। और उसके बारे में सावधानी होती है कि भाई इसे आप ठंडे स्थान पे रखिए, लंबा चलाना है तो आप उसे गर्म जगह रख देंगे तो दो दिन में फफूंदी लग के खराब हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे तो हो सकता है लंबा चल जाए। अब इसी तरह की सावधानी इसके लिए भी है, आप इसके खान पान का ध्यान रखेंगे, ठीक ठाक रखेंगे तो ये 80-90 भी पकड़ लेगा। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो 20-22-25 फफूंदी इसको भी लग जाती है ना। तो ये भी एक प्रोडक्ट है। तो जैसे दुनिया का हर प्रोडक्ट किसी मालिक के लिए होता है, इसी तरह से ये प्रोडक्ट तो मुझ मालिक के लिए है, मैं मालिक आत्मा हूँ, इसकी उपभोग करता हूँ। तो चलिए अब हम कुछ मिनट्स के लिए ज्वालामुखी योग का अभ्यास करेंगे। डिटैच तो आप बैठे ही हैं, आत्मा बन के तो बैठे ही, आत्मा तो आप हैं ही। ओम शांति। बिल्कुल स्थिर हो जाइए, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ हो तो उसे भी छोड़ दीजिए, ध्यान को भ्रुकुटी में केंद्रित कर लीजिए, अंदर ही अंदर चिंतन कीजिए। मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, दोनों नेत्रों के बीच भ्रुकुटी में विराजमान हूं, अति सूक्ष्म प्रकाश का एक कण हूं, शरीर और इंद्रियों की राजा हूं, इस देह में मेहमान हूं, कुछ घड़ियों के लिए देह, देह के संबंध, देह के पदार्थों से अलग होकर एक महायात्रा की उड़ान भर रही हूं। मैं भ्रुकुटी सिंहासन से उड़कर एक रॉकेट की तरह तीव्र गति से साकार लोक को पार करके सफेद लाइट से भरपूर सूक्ष्म लोक को पार करके लाल सुनहरी प्रकाश के लोक ब्रह्मलोक में पहुंच गई हूं। यहां मैं आत्मा संपूर्ण निर्बंधन हूं, सर्व पुरानी स्मृतियों से मुक्त हूं, अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूं। मेरे चारों ओर मेरे मूल गुणों का प्रकाश है, मैं शांति के आनंद में हूं, प्रेम के आनंद में हूं, पवित्रता के आनंद में हूं, मेरा ये बेहद का घर है, अनंत फैला हुआ घर। मैं इस घर की मालिक हूं। मैं अपने भीतर के नेत्र के सम्मुख उस तेजोमय ज्योतिर्पुंज को देख रही हूं। जो मेरा अविनाशी सच्चा अति प्रिय पिता है। मेरे बिलव्ड फादर, स्वीटेस्ट फादर मेरे सम्मुख हैं। मैं 5000 साल का बिछड़ा हुआ उनका सुपात्र बच्चा, उनकी किरणों रूपी बाहों में समा गया हूं। मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड हूं। अतींद्रिय आनंद के झूले में हूं। उनकी सर्व शक्तियों का उत्तराधिकार मुझे मिल रहा है। उनके संग का रंग मुझ पर चढ़ रहा है। मैं अनंत सुख में डूबी हुई हूं। जो पाना था वो मैंने सब कुछ पा लिया है। प्यारे बाबा की किरणों रूपी गोदी में समाकर मुझ आत्मा को जन्म जन्म की तृप्ति मिल गई है। मैं उनके साथ एकाकार हो गई हूँ। सर्व संबंधों का सुख मुझ में भरता जा रहा है। प्यारे पापा से असीम प्यार असीम शक्ति अपने में भर कर अब मैं आत्मा वापस त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो रही हूँ।
उर्मिला बहन जी का खूब खूब धन्यवाद, जिन्होंने प्रैक्टिकल योग करके हम सभी को योग की गहराई का अनुभव कराया। और आप सभी जब घर में जाएं, तभी भी इस योग का प्रयोग करना, और जब भी कोई सड़ा हुआ फल सामने आए तो हाँ निकाल के फेंक देना। खूब खूब धन्यवाद उर्मिला बहन जी।